السلام علیکم، یہ پارٹ 3 ہے ناول بیچارہ شیزور۔ یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف ابن صفی بی اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3۔ یہاں اس نے ریڈی میڈ میک اپ نکال کر جیب میں رکھا تھا اور واش بیسن پر جھک کر منہ دھونے لگا تھا، پھر سیدھا ہو کر چہرہ خشک کر رہا تھا کہ کیپٹن خاوہ دکھائی دیا۔ ہدایت کے مطابق وہ اسی جگہ پہنچا تھا جہاں بلیک زیرو نے اسے عمران سے ملنے کو کہا تھا۔ دن میں کتنی بار منہ دھویا جاتا ہے، اس نے ہنس کر پوچھا۔ جتنی بار کوئی نئی لڑکی سامنے آتی ہے پھر دوسرے کے لیے منہ دھو رکھتا ہوں۔ محاوروں کے صحیح استعمال کا سلیقہ ہوتا جا رہا ہے، ایک کا نام سلیقہ بھی ہے۔ بہرحال اب تو منہ دھو ہی چکا ہوں، دیر تک تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتا۔ سوئمنگ پول کی نشستوں میں سے ایک پر ایک آدمی ہے جس کی نگرانی تمہیں کرنی ہے، نیلے کوٹ اور سرخ ٹائی والا۔ بائیں گال پر چوٹ کا واضح نشان ہے جو دور سے بھی نظر آتا ہے۔ بس اب جاؤ۔ خاور کے چلے جانے پر اس نے دوبارہ ریڈی میک اپ ناک پر فٹ کیا تھا اور سوئمنگ پول کے قریب سے گزرے بغیر پارکنگ پلاٹ کی راہ لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایس پی ارشاد اور کسٹم کے ڈی سی راجن کے متعلق بلیک زیرو کی رپورٹ مل چکی تھی۔ دونوں ہی علامہ کے شاگرد رہ چکے تھے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا کہ اب بھی علامہ سے قریبی تعلقات رکھتے ہوں۔ علامہ، وہ دانت پر دانت جمع کر بڑبڑایا اور گاڑی کا انجن اسٹارٹ کر دیا۔ شیلا اور پیٹر اب بھی رانا پیلس ہی میں تھے۔ ایک بار پھر اس کا ذہن پیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران اس سے ابھی تک علامہ کے خلاف کچھ بھی نہیں اگلوا سکا تھا، وہ برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ علامہ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا یاسمین کی موت سے، اور شیلا کا اس کے باپ دھنی رام نے زہر دلوانا چاہا تھا۔ گاڑی پارکنگ شیڈ سے نکل کر سڑک پر آ گئی، اب وہ رانا پیلس کی طرف جا رہی تھی۔ رانا پیلس میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے فون پر ظفر الملک سے رابطہ قائم کیا تھا۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر بولا، تمہارا تعاقب کیا گیا تھا، تعاقب کرنے والے نے تمہاری نیم پلیٹ بھی بغور دیکھی تھی، تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال خود ادھر کا رخ نہ کرنا، یہی ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ ملاقات اتفاقیہ تھی، اور اگر ڈورا کرسٹی یا اس کا پارٹنر خود ہی یہاں چلے آئے تو میں تمہیں اس صدی کا سب سے خوبصورت آدمی تسلیم کر لوں گا۔ عمران خوشی ظاہر کرتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں سمجھا، اپنی خوبصورتی سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے سمجھاتے ہیں، اگر وہ خود ہی آئے تو کوئی صفائی کا نہیں، اور تمہیں اس کے ملنے جلنے والوں میں ایک قداور اور جسیم ہیپی پر نظر رکھنی ہے، دیسی ہی ہے، غیر ملکی نہیں۔ بہت بہتر، دوسری طرف سے آواز آئی، لیکن تو اس سلسلے میں ڈورایا مائیکل سے براہ راست کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کرو گے۔ ہیپی کا نام میں نہیں جانتا، تمہیں اسے تلاش کرنا ہے، اس کے بعد نام بھی خود ہی معلوم کرو گے۔ میں سمجھ گیا، غالباً مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے حلقہ احباب میں کوئی ایسا آدمی بھی شامل ہے یا نہیں۔ خاصی دیر لگانے لگے ہو سمجھنے میں، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ویسٹ آل، کہہ کر عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بلیک زیرو قریب ہی موجود تھا۔ میں سوچ رہا تھا جناب، اس نے کہا، اس کیس کا تعلق ہمارے محکمے سے ہے بھی یا نہیں؟ قطعی نہیں ہے، اس کا تعلق سریا کے سسرال سے ہے، یعنی کہ بات یاسمین کی موت سے شروع ہوئی تھی جو سریا کی سسرالی عزیزہ تھی۔ ससुराल पर भड़कने की जरूरत नहीं, हमारा मुल्क लातादा ससुरालों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद भी फिल्म बीनों का ख्याल है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला तवाइफ है। क्या आप रात भर नहीं सोए? ब्लैक जीरो ने हमदर्दाना लहजे में पूछा। शायद मैं कोई गैर जरूरी बात कह गया हूँ, इमरान ने खुद कलामी कैसे अंदाज में कहा। ये मतलब नहीं था, ब्लैक जीरो जल्दी से बोला। मैं तनवीर की वजह से परेशान हूँ, उसकी हालत बेहतर नहीं है। ब्लैक जीरो कुछ ना बोला। इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, मेरा ख्याल था कि मियां तौकीर पार्टी के कन्वेंशन में ज़रूर शिरकत करेंगे और लामा उसी दौरान मैं उन पर हाथ साफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन कल कन्वेंशन का आखिरी दिन है, पार्टी के ऑफिस से मालूम करने की कोशिश करो, ब्लैक जीरो ने पूछा। ज़रूरी नहीं, मैं जानता हूँ कि कुछ अहम मेहमानों की वजह से वो शिरकत नहीं कर सके, इलामा ने शायद स्कीम बदल दी है, कुछ और सोच रहा है, कोई और तरीका इख्तियार करेगा। जूलिया को मैंने सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो सफर के दौरान में उनकी निगरानी कर सके। फरहाना जावेद के जरिए लामा क्या करना चाहता है देखेंगे, फिलहाल तो मियाँ साहब उस केस में मुब्तला हो गए हैं। जूलिया की रिपोर्ट से यही मालूम होता है। अब मैं ज़रा पीटर को देख लूँ। ओ, इसके बारे में तो बताना ही भूल गया, उस पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे हैं। जिस कमरे में था उसका सारा फर्नीचर तबाह कर दिया। कब की बात है? आज सुबह। और तुमने इतनी अहम बात भुला दी थी, इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा। माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है तुम लोगों को, किसी की समझ में कुछ नहीं आता और किसी को कुछ याद नहीं रहता। बहरहाल उसे दूसरे फ्रेंडशिप कमरे में मुंतकिल कर दिया या नहीं? दूसरे फ्रेंडशिप कमरे में, ब्लैक जीरो के लहजे में हैरत थी। और क्या, यहाँ का फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है। जी नहीं, वो अभी उसी कमरे में है, इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर को जनविश दी और उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ से शॉर्ट सर्कट टीवी सेट पर पीटर के कमरे की हालत देख सकता। पीटर कमरे के फर्श पर चित पड़ा नजर आया, अपने सारे कपड़े उसने फाड़ डाले थे, पूरे कमरे को उलट पलट कर रख दिया था, ऐसी तोड़ फोड़ मचाई थी कि किसी चीज को भी काबले मरम्मत नहीं छोड़ा था। इमरान ने तवील सांस ली और इस तरह मुंह चलाने लगा जैसे किसी तलख चीज का असर जबान की जड़ से चिमटा रह गया हो। कुछ देर बाद वो कुफ खोल कर पीटर के कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन पीटर की पोजीशन में कोई तब्दीली ना देखकर वहीं ठटक गया। वो बदस्तूर चित पड़ा उसे लातालुकी से देखे जा रहा था। पीटर, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। दर्दी है पीटर किसी बंदर की तरह चचाया था। दर्दी क्या? चीची चीची, इमरान ने इस्तेफामी अंदाज में सर को जनबिश दी। चर्चियास चरीस, पीटर हलक के बल बोला। चर्विस चर्विस, इमरान ने फिर सहलाया था। पीटर उछल कर खड़ा हो गया, चेहरे से नहीं जाहिर होता था कि उसे अपनी बहेंगी का जरा बराबर भी एहसास हो। देखो बेटे, अगर मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो किसी को कानो कान खबर ना होगी। पुलिस अब तक तुम्हारे लिए छक मारती फिर रही है और शेजोर ने तो तहलका मचा रखा है, लेकिन तुम जहाँ थे वहीं हो। चचरास चियास, पीटर ने उस पर छलांग लगा दी। इमरान ने झुक कर उसे पुष्ट पर लिया था और दूसरी तरफ उलट दिया था। वो किसी हैजमत खुर्दा कुत्ते की सी आवाजें निकालता रहा, फर्श पर से दोबारा उठने की भी कोशिश नहीं की थी। मैं देख लूंगा कि ये ढोंग कब तक चलता है, इमरान ने कहा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा दोबारा मकफिल कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे। ब्लैक जीरो फिर आ टकराया, देखा आपने, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये ढोंग है, यह सचमुच इसका दिमाग उलट गया। खुदा जाने, ब्लैक जीरो ने कहा। अभी अभी इतला मिली है कि इलामा कैप्टन फैयाज के दफ्तर में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। कैप्टन फैयाज मौजूद नहीं है। इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए एक लंबी सी हूं की थी। कैप्टन फैयाज सर झुकाए बैठा था और इलामा बुरी तरह गर्ज बरस रहा था। अगर सूरत हाल यही रही तो मजबूरन मुझे बाय रात वजीर आजम से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे महकमे का कोई आदमी ना आपका ताकुब करता है और ना आपकी कयामगाह की निगरानी कराई जा रही है। इस वक्त भी एक मोटरसाइकिल पीछे लगी रही थी, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि ताकुब करने वाला बाहर आपकी वापसी का मुंतजर होगा। मैं क्या कह सकता हूँ, ठहरिए मैं खुद चेक करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये कि आप जिस तरह आए थे उसी तरह रवाना हो जाए, मैं देख लूँगा। मैं समझ गया, चलिए, इल्लामा उठता हुआ बोला। फैयाज को मजीद हिदायत नहीं देनी पड़ी थी। इल्लामा बिल्कुल उसी तरह रुखसत हुआ था जैसे कोई ख़ास बात ना हो। उसकी गाड़ी खासी दूर निकल गई थी। फैयाज ने अपनी गाड़ी सड़क पर निकाली और इसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसे इल्लामा पर शिद्दत से गुस्सा आया था। करीबन एक मील का फासला तय कर लेने के बाद भी कोई ऐसा ना दिखाई दिया जिस पर ताकुब करने वाले का शोबा किया जा सकता, और किसी मोटरसाइकिल सवार का तो दूर दूर तक पता नहीं था। दौड़ जारी रही, हत्ता के लामा अपनी कोठी तक पहुंच गया। फयाज भी अपनी गाड़ी कंपाउंड के अंदर लेता चला गया था। देखा आपने, इलामा ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहा, देखता ही आया हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जिस पर शोबा किया जा सकता, और खसूसियत से ना आपके पीछे कोई मोटरसाइकिल थी और ना मेरी गाड़ी के पीछे। इलामा कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखों में हैरत के आसार साफ पड़े जा सकते थे। और अब कोठी के आसपास ऐसे लोगों की भी तलाश करूंगा जिन पर निगरानी का शोबा किया जा सके, फैयाज बोला। मेरी समझ में नहीं आता, इल्लामा आशा से बड़बड़ाया। आप अंदर तशरीफ ले चलिए, फैयाज ने कहा। मैं आसपास नजर दौड़ा के अभी आया। वो अपनी गाड़ी से उतरकर कंपाउंड के फाटक पर आया था। यहाँ भी कोई ऐसा ना मिला जिसे फैयाज इल्लामा के बयान पर फिट कर सकता। फिर उसने बाहर से कोठी के गेट भी एक चक्कर लगाया था और बेनील और मराम वापस हुआ था। आखिर ये हजरत चाहते क्या हैं, वो सोच रहा था। वजीर आजम से शिकायत करने की धमकी दे डाली थी। बहरहाल था जरूर कोई चक्कर। और फिर उसे इमरान का ख्याल आया, साथ ही इल्लामा के वो शागिर्द भी याद आए जिन्हें किसी ने गिरफ्तार कर रखा था और बेहद अंगेज तौर पर छोड़ भी दिया था। इल्लामा से देखकर उठता हुआ बोला, क्या मुझ पर दर्द होई का भी इल्ज़ाम आने वाला है? बजाहे तो हालात ऐसे ही हैं, फैयाज ने खुश लहजे में कहा। यानी कोई ऐसा नजर नहीं आया? जी नहीं, फैयाज ने कहा। बहरहाल आप गलत नतीजे पर पहुंचे थे। अगर कोई आपकी निगरानी करता भी रहा है तो वो कम अज कम मेरे महकमे का कोई आदमी नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे अपने रवैये पर अफसोस से तशरीफ रखिए और मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कोई और भी तो आपके मामलात में दिलचस्पी ले रहा है, फयाज बैठता हुआ बोला। हाँ, वो नामालूम आदमी जिसने मेरे शागिर्दों को कैद कर रखा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता वो कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, और यास्मीन का कत्ल मेरे सर क्यों थोपना चाहता है। अगर उसे कोई ब्लैकमेलर समझ लिया जाए तो आखिर मकसद क्या है, जबकि अभी तक उसका कोई मुतालबा भी मेरे सामने नहीं आया है। मेरा महकमा उस नामालूम आदमी में दिलचस्पी ले रहा है। इल्लामा कुछ ना बोला, उसकी आंखों से फिक्रमंदी झलक रही थी। आप भी किसी ऐसे आदमी की निशानदेही नहीं कर सके जो आपको जिक देने के लिए इस हद तक जा सके। मैं क्या बताऊं, जबकि मैं किसी को भी अपना दुश्मन समझने पर तैयार नहीं। आपके दो शागिर्दों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका, शेला और पीटर। जी हाँ, वही, फैयाज सर हिलाकर बोला। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने उन दोनों को क्यों नहीं छोड़ा। हो सकता है वो दोनों उसकी दानिश में मेरे मुतालिक दूसरों से ज़्यादा मालूम रखते हों, इल्लामा मुस्कुराकर बोला था। और ये भी मुमकिन है कि वो दोनों खुद ही रुपोश हो गए हों, खुदा जाने, इल्लामा बेजारी से बोला। शैला बहरहाल हमारी लिस्ट पर है, क्योंकि वो यास्मीन के घर वालों को धोखे में रख कर इधर उधर लिए फिरती थी, उनके जाती मामलात थे। अच्छी बात है, अब इजाज़त दीजिए, फयाज उठता हुआ बोला। चाय? नहीं शुक्रिया, एक बेहद ज़रूरी काम छोड़कर उठा था। फयाज फिर ऑफिस की तरफ पलटा था। झंझलाहट का ये आलम था कि सख्ती से दांत पर दांत जमा रखे थे, जबड़े दुखने लगे थे, सीट पर बैठने नहीं पाया था कि सेक्रेटरी ने उन लोगों की लिस्ट पेश कर दी थी जिनकी फोन कॉल्स उसकी अदम मौजूदगी में आई थी। सबके ऊपर इमरान का नाम देखकर भड़क उठा। तुमने इन लोगों के फोन नंबर नहीं लिख लिए? किसी ने बताया ही नहीं जनाब। तुम्हें मालूम करना चाहिए था, हो सकता है इनमें से बाज लोग अहम हों। गलती हो गई जनाब, फयाज कुछ और कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर जल्दी से रिसीवर उठाया था और दूसरी तरफ से इमरान ही की आवाज़ सुनकर तवील सांस ली थी। क्या बात है? उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। खैरियत दरियाफ्त करने के अलावा और क्या अर्ज हो सकती है? सिक्योरिटी अब भी मेज के करीब ही मौजूद था। फयाज ने बाएं हाथ से पेंसिल उठाई और पैड पर कुछ लिखने की कोशिश करने लगा, साथ ही इमरान से कहता जा रहा था, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, पछताओगे। इल्लामा क्यों आया था? इमरान ने पूछा। क्या मतलब? मुझे इतला मिली थी कि वो तुम्हारे ऑफिस में बैठा हुआ है। किस से इतला मिली थी? मेरे अपने जराए हैं, अगर मुनासिब समझो तो मुझे भी बता दो। फयाज ने बाएं हाथ से लिखी जाने वाली तहरीर की तरफ सेक्रेटरी को मतवज्जा किया था और इमरान से बोला था, उसे शिकायत है कि मेरे महकमे के लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं, कह रहा था कि अगर ये सिलसिला बंद न किया गया तो वो बराह रास्त वजीर आजम से शिकायत करेगा। सेक्रेटरी ने छुपकर तहरीर पढ़ी थी और तेजी से बाहर चला गया था। तो फिर अब तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं, देखा जाएगा। हालांकि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारा महकमा बिल्कुल मासूम है, बेकसूर है, खामखा उसके जी को लगा रहा है ये लामा। जबान सड़ जाए इसकी, तन तन कीड़े पड़े, क्यों बकवास कर रहे हो? यकीन करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा महकमा कुल्ली तौर पर इस मामले से दस्तखत हो गया है। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बात होगी कि तुम महज अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर की हद तक इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे, यही समझ लो। फयाज गुर्राया। लेकिन तुम क्यों गए थे इल्लामा के पीछे? ओ, तो वो तुम्हारे आदमी हैं, तुम भी यही समझ लो। लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया था, ना रास्ते में और ना इल्लामा की कोठी के आसपास। वो मेरे गुर्गे हैं, उन पर सरकारी छाप तो है नहीं कि हर एक को दिखाते फिरें। आग से मत खेलो, अगर उसने वाकई शिकायत करी और ऊपर से कोई हुक्म आ गया तो तुम्हारे वारिस साहब भी बेबस होंगे। या तुम हर बात पर वारिस साहब का हवाला क्यों दे बैठते हो? खैर अंदेश हो उनका। क्या अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया जिसे तुमने मेरा फोन डिटेक्ट करने को कहा था? नहीं, फयाज ने गैर इरादी तौर पर कहा और फिर गड़बड़ा कर बोला, क्या कहा था तुमने? आवाज साफ नहीं आई थी। गजल सराई जारी रखो, अगर एक्सचेंज से मेरे फोन के नंबर मालूम कर सके तो 2.5 पाव मोती चूर के लड्डू खिलाऊंगा। संजीदगी से गुफ्तगू करो, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। फिर फांसी का फंदा किसकी गर्दन के लिए तैयार किया जाए? क्या मतलब? यास्मीन की मौत इत्तफाकिया नहीं थी, ये साबित हो चुका है। सो तेरी माँ के अलावा और कोई नहीं हो सकता, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। अच्छा तो फिर मुंतजर रहो, सिविल पुलिस की नाकामी के बाद केस तुम्हारे ही पास पहुंचेगा। यकीन करो इसी का इंतजार है, फैयाज घुराया। इतने में सेक्रेटरी भी वापस आ गया था। फैयाज ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। और फैयाज अचानक बहुत ज्यादा भड़क कर बोला, जहन्नुम में जाओ। उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया था। एक्सचेंज से क्या मालूम हुआ, वो सिक्योरिटी की तरफ देखे बगैर बोला। एक्सचेंज ने माजूरी जाहिर की है जनाब, क्या तुमने महकमे का हवाला कोड नंबर समेत नहीं दिया था? दिया था जनाब, वो डिटेक्टिव नहीं कर सके। जाओ, वो हाथ हिलाकर बोला। और सिक्योरिटी के जाने के बाद कुर्सी की पुष्ट गाल से टिक कर इस तरह हाँपने लगा जिसे कोहे पेमाई के बाद ढेर हो गया हो। करीबन 5 मिनट तक यही कैफियत रही थी। फिर उसने शानों को जनबिस दी थी और गर्दन झटक कर सीधा हो बैठा था। फिर फोन की तरह हाथ बढ़ाकर रहमान साहब के नंबर डायल किए थे। दूसरी तरफ से इनके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनकर बोला था, कैप्टन फैयाज साहब से मिलाओ। 1 मिनट जनाब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई और फैयाज इंतज़ार करता रहा। हेलो, रहमान साहब की आवाज़ आई। फैयाज सर, क्या बात है? हाजिर होना चाहता हूँ। कोई खास बात? जी हाँ, आ जाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी और फिर सिलसिले मुनकता हो जाने पर फैयाज ने भी रिसीवर रख दिया था। आंधी और तूफान की तरह रहमान साहब के दफ्तर की तरफ रवाना हुआ। इमरान के खिलाफ बुरी तरह उबर रहा था। दफ्तर पहुंच का इंतजार नहीं करना पड़ा था। रहमान साहब ने फौरन ही अंदर बुलवा लिया था। किसी तमहीद के बगैर ही फैयाज ने इल्लामा की धमकी की कहानी और अपने भाग दौड़ की रोदास शुरू कर दी थी। रहमान सुकून के साथ सुनते रहे। फिर इमरान का जिक्र निकला और बात खत्म होने तक वो कुछ भी ना बोले। और कुछ? उन्होंने उसके खामोश होने पर पूछा था। जी नहीं। क्या इल्लामा ने इमरान के खिलाफ शोभा जाहिर किया था? जी नहीं। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? इमरान ने मुझसे कहा था। जाहिर कि तुम इल्लामा को इससे आगाह नहीं करोगे। यकीनन जनाब, मैंने सोचा कि आपके गोश गुजार कर दूं। 10 साल बाद यासमीन की मौत से शुरू हुई थी। मैं जानता हूं, जब तक केस बाजाब्ते तौर पर हमारे पास ना पहुंचे हमें उसके बारे में सोचना भी ना चाहिए। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? मुझे इतला मिली है कि मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को तुमने इस सिलसिले में कुछ हिदायत भी दे रखती है। फैयाज की पेशानी पर पसीने की बूंदें पटोने लगी थीं। उसने जेब से रुमाल निकालकर पसीना खुश किया था और हकलाने लगा था। इमरान ने बताया था कि बस। रहमान साहब ने हाथ उठाकर कहा, अब तुम जा सकते हो, मुझे इल्म है तुम क्या नहीं कहना चाहते, अपने काम से काम रखो। बेहतर जनाब, फयाद उठता हुआ बोला था। ठहरो, रहमान साहब बोले, अगर इल्लामा को इमरान से कोई शिकायत होगी तो वो बराह रास्त पुलिस से रब्ता कायम करेगा, निजी तौर पर तुम्हारे पास नहीं दौड़ा आएगा। जी हाँ, ये बात तो है। बस जाओ। फयाज बुरी तरह हाँपता हुआ डीजी के ऑफिस से बरामद हुआ था। शैला फाड़ खाने के मूड में थी और इमरान मुसमुसी सूरत बनाए बैठा था। ऐसा लगता था जैसे ताजा ताजा यतीम हुआ हो। जब ऐसी शक्ल हो जाती है ना तो तुम्हारी तो मेरा गुस्सा फर्द होने लगता है। वो दांत पीस कर बोला, मैं चीज ही ऐसी नहीं हूं कि मुझ पर गुस्सा उतारा जा सके। लेकिन बताओ मुझे, मैं क्या करूं? ये मुझसे पूछ रहे हो? फिर किससे पूछूं? इतनी लंबी चौड़ी हो कि ना तुम्हें जेब में रख सकता हूं ना पॉकेट बुक में। मैं कुछ नहीं जानती। आज तुम्हारे साथ जरूर बाहर जाऊंगी। चलने का अंदाज बदलने के लिए जो मश्क बताई थी वो भी ना हो सकी होगी तुमसे। हुई थी, ये देखो। वो कमरे के एक सिरे से दूसरे तक चली गई थी। और इमरान ने कहा था, हाँ किसी हद तक अब कुछ बातें करो। क्यों उल्लू बना रहे हो? अरे वाह, वो खोपड़ी हलनत कंट्रोल भी तो देखूंगा। नामुमकिन, बातें करते वक्त सर जरूर हिलेगा। कोशिश तो करो कि ना हिले, फजूल बातें ना करो। हम उसी मेकअप में बाहर निकलेंगे जिसमें उस दिन थे। उसे भूल जाओ। शेजोर जानता है कि वाजिद उस दिन बीच होटल में किन लोगों के साथ था और बाहर निकलते ही गायब हो गया था। तो भी कोई दूसरा मेकअप? कोई हफ्ता पड़ती है तो नर्वस हो जाती हूँ। अब तुम्हें ऐसी कोई शिकायत ना होगी। इतने दिनों की कैद ने दिल को पत्थर कर दिया है। पिता की दीवानगी के बारे में क्या ख्याल है? तुम जहर की बकिया मकदार उसके पास से बरामद नहीं कर सके थे। हो सकता है वही काम आई हो। बकिया मकदार से क्या मुराद है? हो सकता है एक खुराक से ज्यादा मकदार ही हो। नहीं, उसे पूरी शीशी खाली कर दी थी। शीशी मैंने उससे छीन ली थी। दरअसल उस जहर को एक इंकशतरी में भर कर इस्तेमाल किया जाता। इंगस्ट्री भी उसने मेरे हवाले कर दी थी। तो फिर बन रहा होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सचमुच ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम उससे कुछ भी ना बुलवा सकोगे। देखा जाएगा। आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? 717वीं बार ये सवाल किया है तुमने। बहरहाल जो कोई भी हो, बेहद शरीफ आदमी हूँ। शहर में हमारी कमीनगी के डंके बज रहे हैं और आप फरमाती हैं बेहद शरीफ आदमी हो। जो तुम्हें कमीना कहता हो, खुद उसकी 7 पुश्तों में कभी कोई शरीफ ना रहा होगा। इमरान कुछ कहने ही वाला था कि स्विच बोर्ड पर सुख रंग का एक बल्ब जल्दी जलने बुझने लगा था। ओ, मैं अभी आया, इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। शैला के कमरे से निकलकर वो उस जगह पहुंचा था जहां से सिग्नल दिया गया था। ब्लैक जीरो उसका मुंतजर था। क्या बात है? इमरान ने पूछा। अभी अभी इतना मिली है कि यास्मीन की बहन भी मर गई। ओ, इमरान सन्नाटे में आ गया। और ये कल शाम का वाकया है। घर में जमीनों से उतर रही थी, लड़खड़ाई और नीचे चली आई। लोग उठाने दौड़े लेकिन वो मर चुकी थी। तफसील नहीं मालूम हो सकी। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा था। फिर उसने फोन पर रहमान साहब के नंबर डायल किए थे। हेलो, दूसरी तरफ से रहमान साहब की आवाज आई। मैं बोल रहा हूँ जनाब, मुझे अभी अभी दूसरे हादसे की इतला मिली है। तुम्हारा ये तरीका अब नाकाबले बर्दाश्त होता जा रहा है। रहमान साहब की गुस्सीली आवाज आई थी। मैं नहीं समझा जनाब। कहाँ हो? मुझसे फौरन मिलो। बहुत बेहतर, मैं ऑफिस से सीधा घर जा रहा हूँ, अभी हाजिर हुआ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता कर दिया गया था। इमरान अच्छी तरह जानता था कि इसका मकसद क्या है। इस हादसे के बाद ही से रहमान साहब की कोठी की कड़ी निगरानी हो रही होगी, यानी उसने उधर का रुख किया और मारा गया। लेकिन अब तो जाना ही था। रोज रोशन में वो रास्ता भी नहीं इस्तेमाल कर सकता था जिसके जरिए अपने कमरे से गायब हो जाया करता था। दफातन वो उठ खड़ा हुआ। ब्लैक जीरो उसे हैरत से देख रहा था क्योंकि शायद पहली बार उसने उसके चेहरे पर झंझलाहट के आसार देखे थे। कोई खास बात जनाब? उसने डरते डरते पूछा। घर जा रहा हूँ। खतरनाक, वो जल्दी से बोला। घर के आसपास तो उसने दर्जन भर आदमी छुपा रखे होंगे। देखा जाएगा, मेकअप के बगैर यही सोचा है। वो राणा पैलेस से निकल खड़ा हुआ था। रेडीमेड मेकअप भी इस्तेमाल करने की जहमत नहीं गवारा की थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई अंधी चाल चलने का इरादा रखता हो। पैदल ही रवाना हुआ था। एक जगह रुककर टैक्सी का इंतजार करने लगा। चेहरे के अजलात ढीले पड़ गए थे। आंखों में झंझलाहट का शाइबा तक नहीं था। कुछ देर बाद टैक्सी मिल गई थी। उसने ड्राइवर को कोठी का पता बताया था। कोठी तक पहुंच भी गया, टैक्सी कंपाउंड में दाखिल हो गई थी। सारे अंदेशे गलत निकले थे या फिर टैक्सी को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। रहमान साहब अच्छे मूड में नहीं थे। इमरान को देखते ही बरस पड़े। ये नॉवेल बेचारा शेजोर का बक्के हिस्सा पार्ट 4 में समाप्त फरमाए।